दौला पुस्तक 12 लेक्चर नंबर 15 ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् कम्मट्ठजनियवेयण उवहि समुत्तिन्नये जिने नमिउं वेयण महाहियारम् विविहियारम् परुवेमो। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें अपना जो वेदना भाव विधान अनुयोग द्वार के पश्चात अपनी यहाँ चूलिका चल रही है, दूसरे नंबर की चूलिका है, और उसमें अभी हमने कल अविभाग प्रतिच्छेद वर्ग वर्गणा आदि की बात देखी थी, स्पर्धक की भी बात देखी थी। 101 नंबर के पृष्ठ पर हम आ गए हैं, पेज नंबर 101 पर है, और ये अंतर प्ररूप ना वहां से हम शुरू करेंगे। देखो पहले हमने क्या देखा था, यह अनुभाग स्थान किसको कहना, योग स्थान में हमने सभी प्रदेशों का एग्रीगेट जो योग होता है उसको देखते हैं, अनुभाग स्थान में ऐसा नहीं करते। अनुभाग स्थान में क्या करते हैं कि अंतिम स्पर्धक के अंतिम वर्गणा में एक परमाणु में जो अविभाग प्रतिच्छेद है उसको स्थान ऐसा कहने में आता है, उसको हम अनुभाग स्थान कहेंगे। जैसे स्थिति कितनी कहते हैं हम, स्थिति सत्व, सत्ता की स्थिति कितनी कहलाती है, अंतिम निषेक के जितनी स्थिति है, पर अंतिम निषेक के परमाणु प्रत्येक परमाणु में उतनी स्थिति है, तो वहां पर भी हम ऐसा कहते हैं ना, स्थिति किसको कहेंगे, स्थिति सत्व किसको कहेंगे। तो अंतिम निषेक के एक एक परमाणु में जितनी पड़ी हुई स्थिति उसको हम स्थिति कहेंगे, स्थिति स्थान कहेंगे सत्व की अपेक्षा। बंध जब स्थिति बंध स्थान देखने, तो बंध कितना होता है उसकी बात करेंगे, पर उसमें भी अंतिम निषेक की स्थिति को ही लेते हैं। यहां पर भी स्पर्धक रचना जो हम करते हैं, अनुभाग की अपेक्षा जब हम रचना करते हैं, तो सबसे मिनिमम अनुभाग वाले जो परमाणु है, एक एक परमाणु को वर्ग कहते हैं, और ऐसे मिनिमम अनुभाग वाले हम एक लाइन में लिखेंगे उसको कहेंगे वर्गणा। एक एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ते हुए जो वर्गों के समूह हम एक एक लाइन में लिखते चले जाएंगे उसको कहेंगे दूसरी वर्गणा, तीसरी वर्गणा, चौथी वर्गणा। ऐसे अनंत वर्गणा एक एक अविभाग प्रतिच्छेद से बढ़ती हुई होती है, उसको कहेंगे एक स्पर्धक। फिर बहुत बड़ा अंतर देके फिर जो पहली वर्गणा का जो अविभाग प्रतिच्छेद था एक एक परमाणु का, उससे दो गुना हो जाता है, वहां से दूसरा स्पर्धक, उसकी भी अनंत वर्गणा, फिर अंतर, फिर तीसरा स्पर्धक, इस तरह स्पर्धक भी अनंत होते हैं। तो ये सब अपनी प्ररूपणा यहाँ वर्गणा की और स्पर्धकों की हुई। अब यहाँ कहते हैं कि अंतर प्ररूपणा यहाँ बताएंगे। अंतर उसी को कहते हैं कि एक स्पर्धक में अनंत वर्गणा होने के बाद वहां अभी बढ़ते हुए अनुभाग के कोई वहां ऐसे परमाणु है ही नहीं है, डायरेक्ट कितने हो गए, वो दो गुना वाले। जघन्य वर्गणा में जितना एक एक वर्ग में अविभाग प्रतिच्छेद था उससे दो गुना हो जाते, पर बीच में बहुत बड़ा अंतर पड़ जाता है। तो ये अंतर की प्ररूपणा यहां बता रहे हैं। 101 पेज पर 3 नंबर की लाइन, अंतर प्ररूपणा 3 प्रकार की है, यानी इसमें 3 बातें बताएंगे। प्ररूपणा यानी अंतर होता है, बस इसे प्ररूपणा करेंगे। वो अंतर का प्रमाण कितना होता है, प्रत्येक स्पर्धक में जो अंतर है उसका प्रमाण बताएंगे, और अल्प बहुत्व भी बताएंगे। प्ररूपणा सुगम है क्योंकि बहुत्व स्पर्धकों की प्ररूपणा से ही अंतर का अस्तित्व सिद्ध होता है। क्या कहते हैं, स्पर्धक किसको कहेंगे, एक एक अविभाग प्रतिच्छेद से बढ़ती हुई वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। जहां इसे एक एक से बढ़ते नहीं, तो दूसरा स्पर्धक, तीसरा स्पर्धक, चौथा स्पर्धक शुरू होता है। अनेक स्पर्धक होते हैं, कितने, तो अनंत होते हैं। तो अनंत होते उसका मतलब ही बीच बीच में गैप पड़े बिना दूसरा स्पर्धक नहीं होता है। तो अनेक स्पर्धक होते हैं इस कथन से ही बीच में अंतर है ये बात सिद्ध होती है, ये कहना चाहते हैं। अंतर के बिना द्वितीय आदि स्पर्धकों की संभावना नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूएशन में होते तो पूरा उसको एक ही स्पर्धक बन जाता है। अगर वर्गणा वर्गणा के, क्योंकि जितने वर्गणाएं एक एक अविभाग प्रतिच्छेद से बढ़ती हुई है उनको तो हमने मिलकर स्पर्धक कहा, अगर थ्रू आउट अंतिम वर्गणा तक ऐसा ही होता तो सबका मिलकर एक स्पर्धक कहते। यह दूसरा स्पर्धक, तीसरा स्पर्धक, चौथा स्पर्धक, इसका अर्थ ही बीच में अंतर है ये कहना चाहते, क्योंकि ऐसा मानने में विरोध आता है। प्रमाण कहते हैं, उसका प्रमाण कितना है, अंतर का प्रमाण उसको बता रहे हैं। सब जीवों से अनंत गुणे अविभाग प्रतिच्छेदों से एक एक स्पर्धक का अंतर होता है। देखो पहले हमने देखा था कि जघन्य वर्ग में अविभाग प्रतिच्छेद कितना है, चला निकाल के बताओ। देखो हाँ, जीवन की संख्या से अनंत गुणा, हाँ वही पेज नंबर 92। अविभाग प्रतिच्छेद किसको कहना, उसकी बात हमने देखी थी वहां पर, कि एक वर्गणा के एक वर्ग में जितना जितना उसका अविभाग प्रतिच्छेद है, यानी जितना उसका अनुभाग है, उससे जितना बढ़कर दूसरे वर्गणा के वर्गों में होता है उसको कहेंगे एक अविभाग प्रतिच्छेद, क्योंकि एक एक अविभाग प्रतिच्छेद से ज्यादा होता है। अब वहां ये कितनी होते हैं यह उन्होंने पेज नंबर 93 में बताया। सब जीवों से अनंत गुणे अविभाग प्रतिच्छेद प्राप्त होते हैं। और उसमें एक एक से बढ़ते हुए कितने चले जाएंगे, ऐसे कितने वर्गणाएं होगी, तो अभव्यों से अनंत गुणा और सिद्ध राशि के अनंत विभाग प्रमाण। हाँ, वर्गणा का माप है, क्योंकि देखो यहाँ जो जीव राशि से अनंत गुणा वाला जो पहले वर्ग में यानी जघन्य वर्ग में जो अविभाग था वो दो गुणा होता है, और वर्गणाएं कितनी हुई जीव अभव्यों के अनंत गुणा सिद्ध राशि के अनंत भाग, यानी पूरे जीव राशि का अनंत भाग ही। समझ में आती है ना बात, यानी वर्गणा 1, 2, 3, 4 ऐसी वर्गणा कितनी हुई जीव राशि के अनंत विभाग, हम उसको दूसरी भाषा में बता रहे। और अविभाग प्रतिच्छेद एक एक से बढ़ता हुआ, यानी डबल तो नहीं हुआ था, तो बीच में कितना अंतर चला जाएगा, तो जीव राशि से अनंत गुणा इतना अंतर हो जाएगा, और तब जाके वो पहला जो अनुभाग है वो दो गुणा हो जाएगा, क्योंकि अनंत विभाग प्रमाण ही जितना अविभाग था उसके अनंत विभाग प्रमाण तो एक एक से बढ़ते हुए तो स्पर्धक सॉरी वर्गणाएं बनी है, तो अनंत बहुभाग तो अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जब पहला अनुभाग दो गुणा हो जाता है, हमने कैसे उदाहरण लिया था, जैसे 100, 101, 102, 103 तक हमने देखी थी, और फिर एकदम 200 तक चला जाता है, यानी बीच वाले 97 या जो जितनी है 95 तक नहीं, पहली 100 है,
दूसरा
नहीं नहीं,
201 से शुरू होगा,
वो दूसरा स्पर्धक शुरू होगा 201 से नहीं, 200 से। पहला स्पर्धक की पहली वर्गणा 100 है, हमने तीन ही चार ही वर्गणा मानी, कितनी 101 वाली एक, 102 वाली है, 103 वाली है, यानी 100, 101, 102, 103 चार वर्गणा हुई। फिर 103 के बाद डायरेक्ट 200 का नंबर आया, 200 आ गया।
अच्छा, तो 187 के बाद 200
आ। नहीं, इतना बड़ा अंतर है ये तो कह रहे हैं, हमने चार ही वर्गणाएं की और अंतर ऊपर का जो, हाँ देखो 200 - 103 इतना तो अंतर हुआ बीच में, ख्याल में ना, क्योंकि ये पहला 100 भी जीव राशि से अनंत गुना है और 97 भी जीव राशि से अनंत गुना ही होगा ये कहना चाहते हैं। फिर 201, 203 बस चार ही वर्गणा है, फिर 300 का नंबर आएगा। बहुत बड़ा अंतर है ये, बहुत ज्यादा बड़ा अंतर है, यानी उस अनुभाग वाले कोई परमाणु ही नहीं हो पाए जाते, परमाणु के इसी तरह से वो पाए जाएंगे, इतनी वर्गणाएं, फिर बीच में अंतर, फिर उस जाति के परमाणु, फिर उसमें अंतर, अनुभाग का अंतर, इस तरह से अनंत स्पर्धक होते हैं। यही बता रहे अभी। देखो प्रमाण फिर देखते हैं, 101 पेज पर बात चल रही थी अपनी। प्रमाण कहते हैं, सब जीवों से अनंत गुणे अविभाग प्रतिच्छेदों से एक एक स्पर्धक का अंतर होता है। यानी नीचे के स्पर्धक की अंतिम वर्गणा और ऊपर के स्पर्धक की पहली वर्गणा, इसमें अंतर कितना है अविभाग प्रतिच्छेदों का, तो जीव राशि से अनंत गुणे इतना होता है। प्रमाण प्ररूपना समाप्त हुई। अल्पभूतव नहीं है, क्योंकि जघन्य स्थान के सब स्पर्धक समान पाए जाते हैं। इसका अर्थ नंबर ऑफ वर्गणाएं, वो अंतर, वो सब समान होगा।
अंतर बढ़ेगा ना?
कैसे बढ़ेगा?
201 से
देखो, 103 से 200 हुआ, 203 से 300 हुआ, 303 से 400 हुआ, अंतर तो समान ही होगा ना? ख्याल में आई बात? देखो जघन्य स्थान में, ये जघन्य स्थान की चर्चा चल रही थी। देखो पहले में पहले हमने ये बात, जघन्य स्थान का वर्णन चल रहा है हमारा पेज नंबर 98 से बात हो रही। जघन्य स्थान क्या है उसको यहाँ समझा रहे थे। वो अंतिम सब स्पर्धक समान है, यानी उस स्पर्धकों में नंबर ऑफ वर्गणाएं समान होगी। वहां अंतिम लाइन थी ना, वहां पर अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा संबंधी एक परमाणु में स्थित अनुभाग जघन्य स्थान रूप है। हम जघन्य स्थान की चर्चा करें, कहीं पर भी अनुभाग स्थान किसको कहना? अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा के एक परमाणु में जो अविभाग प्रतिच्छेद है, उसी को अनुभाग स्थान संज्ञा है। यह हम जघन्य की बात कर रहे हैं, तो जघन्य की बात बता रहे, क्योंकि बात हमने जघन्य की उठाई। आगे बाकी चर्चा आगे करेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। देखो अब लास्ट पैराग्राफ 101 पृष्ठ पर, आधार में आधेय का उपचार करने से। अभी आधार आधेय की बात नियमसार में भी हो रही ना, आधार आधेय का विकल्प नहीं है भाववान और भाव वाले में, यहां अलग बात है। यहाँ परमाणु के आधार से उसका अविभाग प्रतिच्छेद है। अनुभाग जो है वो परमाणु के आधार से है, तो परमाणु को भी अविभाग प्रतिच्छेद कह सकते हैं, ये कह रहे हैं। अभी देखो, आधार में आधेय का उपचार करने से, उपचार कर रहे अविभाग प्रतिच्छेदों के आधारभूत परमाणु भी, यानी जो कर्म परमाणु है जिसको हम वर्ग कह रहे हैं, उसके आधार से अविभाग प्रतिच्छेद है, तो परमाणु भी अविभाग प्रतिच्छेद कहे जाते हैं। हमारी अविभाग प्रतिच्छेद प्ररूपणा में यहाँ हमने जो बातें यहाँ बताना चालू की थी उन्होंने, तो यहाँ नंबर ऑफ परमाणु को भी उसमें कहेंगे, क्योंकि उसके आधार से अनुभाग पाया जाता है। इसलिए प्रदेश प्ररूपणा को भी, प्रदेश प्ररूपणा का अर्थ होता है, देखो हमने अभी अविभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा देखी थी कि एक एक वर्ग में जो अविभाग प्रतिच्छेद होता है वो समान वर्गों के समूह को हमने वर्गणा कहा, वो पहली वर्गणा मिनिमम वाली, दूसरी वर्गणा में एक अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा, तीसरे में और एक ज्यादा, इस तरह से बढ़ते गए। परंतु यहाँ प्रति वर्गणा परमाणु की संख्या कम होती चली जाएगी, जिसको हम कहेंगे प्रदेश की प्ररूपणा। तो प्रदेशों से कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि प्रदेश यानी नंबर ऑफ परमाणु अलग बात है और अनुभाग अविभाग प्रतिच्छेद अलग बात है, परंतु कह के उन्हीं के आधार से तो अविभाग प्रतिच्छेद पाया जाता है। इसलिए उपचार कर रहे परमाणु को भी अविभाग प्रतिच्छेद संज्ञा देकर अब यहाँ प्रदेशों की प्ररूपणा करेंगे, कि पहले जो वर्गणा उसमें प्रदेश कितने, दूसरी वर्गणा में, वो एक एक जैसे घटते हुए जाएंगे। जैसे हमने निषेक रचना में देखते, हम स्थिति में हम देखते ना, वहां एक गुणहानि, फिर परमाणु की संख्या आधी हुई, फिर आधी हुई, आधी हुई, किसमें? निषेकों में। अब निषेकों से हमें कोई मतलब नहीं है, ये हम वर्गणाओं के प्रति देखेंगे, क्योंकि एक स्पर्धक में इतनी वर्गणा, फिर दूसरे स्पर्धक की वर्गणा, तीसरी स्पर्धक की वर्गणा, अविभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा अंतर है, पर प्रदेश घटने की अपेक्षा से अंतर नहीं है। नहीं समझे? प्रदेश तो एक एक चय से घटते चले जाएंगे, जय प्रमाण घटते जाएंगे, परंतु देखो हमने क्या देखा था, एक स्पर्धक के बाद बीच में अंतर देकर दूसरे स्पर्धक की वर्गना चालू होती है। हम पाटी पर देखते हैं, ये जो अंतर हम कहते हैं अभिभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा, देखी हमने ये वर्गना यहाँ पूरी हुई, फिर ये अंतर है अभिभाग प्रतिच्छेदों का अंतर बताया, जैसे उन्होंने हमने देखा 100 से हमने 103 तक देखा और यहाँ 200 से लेकर 203 तक देखे। परंतु वर्गना अगर हम प्रदेशों की अपेक्षा बात करेंगे तो प्रदेशों के नहीं नंबर ऑफ परमाणु, तो ये सभी वर्गना एक साथ हम एक के ऊपर ऐसे लिख सकते सभी अनंत स्पर्धकों, तो उसमें फिर अनंत स्पर्धक जाके वो आधे हो गए। देखो यानी कितने अधिक स्पर्धक जाकर वो आधी होगी, जिसको हम गुणहानि कहेंगे। कौन सी? अनुभाग की अपेक्षा गुणहानि, प्रदेश गुणहानि अनुभाग की अपेक्षा, और हम वो स्थिति में लगाते थे प्रदेश गुणहानि स्थिति की अपेक्षा, वो निषेकों में हम लगा रहे थे और ये हम वर्गणाओं में लगा रहे। अगर हम प्रदेशों की अपेक्षा कहेंगे तो इन वर्गणाओं में बीच में कोई अंतर नहीं दिखेगा। पहले स्पर्धक की अंतिम वर्गणा से एक चय प्रमाण परमाणु कम करेंगे तो दूसरी स्पर्धक की पहली वर्गणा हो जाएगी। अनुभाग में तो अंतर है, प्रदेश हानि में कोई अंतर नहीं है। यहां तक बात ख्याल में? अभी यही पूरी प्ररूपणा चलेगी प्रदेशों की। देखो फिर से पढ़ती हूं मैं। अब आधार में आधेय का उपचार करने से अविभाग प्रतिच्छेदों के आधारभूत परमाणु भी अविभाग प्रतिच्छेद कहे जाते हैं, इसलिए यहां प्रदेश प्ररूपणा भी कर रहे हैं। इसलिए प्रदेश प्ररूपणा को भी, यानी प्रदेशों की भी प्ररूपणा कथन यहाँ बताएंगे, वो भी अविभाग प्रतिच्छेद प्ररूपणा मानकर यहाँ जघन्य स्थान में प्रदेश प्ररूपणा करते हैं। कोई भी स्थान हो इसी तरह से वहाँ रचना होगी, परंतु जघन्य स्थान बताना शुरू किया है तो उसी में हम बता रहे हैं, वह इस प्रकार है। अब ये जो प्रदेश की प्ररूपणा है, प्रदेश प्ररूपणा यानी नंबर ऑफ परमाणु, उसकी संख्या बतानी है, तो पहली नीचे की जो पहली वर्गणा है उसमें नंबर ऑफ परमाणु सबसे अधिक होंगे। जैसे हम कर्मों की स्थिति में देखते थे निषेक रचना में, पहला निषेक था और वहां की गुणहानि उस प्रमाण में है, यहाँ की गुणहानि जुदी है, तो वहां कितने उसका टोटल नंबर को डेढ़ गुणहानि से भाग देते थे तो पहले निषेक के परमाणु आते थे। यहां पर भी ऐसा ही करना है, यहां भी डेढ़ गुणहानि, पर कौन सी डेढ़ गुणहानि? यह अनुभाग की डेढ़ गुणहानि जो अनंतों में होगी। निषेकों में स्थिति में डेढ़ गुणहानि पल्ले का असंख्यात अभाग था और यहां गुणहानि तो अनंतों में होगी। ख्याल में आती इतनी बात? समझ में आती? क्योंकि उसका प्रमाण अलग होगा परंतु गुणहानि चय नाम तो ऐसे ही ऐसे हो गए। अब देखते वो इस प्रकार यहां छह अनुयोग द्वार बताएंगे। प्ररूपणा, प्ररूपणा में क्या कहेंगे कि वो सभी में प्रदेश होते हैं, इसे प्ररूपणा कहेंगे। उसका प्रमाण कितना है वो बताएंगे, यानी एक एक वर्गणा में नंबर ऑफ परमाणु कितने होते उसकी बात करेंगे। श्रेणी कहेंगे, श्रेणी का अर्थ क्या है, प्रति वर्गणा में कितने परमाणु होते उसमें वो फिर दो प्रकार की प्ररूपणा करेंगे। एक एक वर्गणा वर्गणा प्रति कितनी हानि होती है उसको अनंत रूप निधा कहते हैं, और फिर डायरेक्ट जाके आधे हो गए, आधे के आधे परम परोपनिधा कहेंगे। फिर अवहार का अर्थ होता है उसमें कितने परमाणु होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ परमाणुओं को कौन सी संख्या से भाग देने पर उनका प्रमाण आता है। जैसे हम कहेंगे पहली वर्गणा के लिए अवहार क्या है, तो डेढ़ गुणहानि, इस तरह से उसका अर्थ होता है। वो फिर भागा भाग यानी कितने भाग प्रमाण है और अल्पभूतव, ये बातें सब बताने वाले हैं। 256 से लेकर 9 तक क वह छपा नहीं है, ब्रह्मा क लिखना। 256 से लेकर 9 तक संदृष्टि में स्थापित कर। यहाँ हमारे आचार्यों की ऐसी करुणा है कि वो छोटी संख्या लेकर हमको बताते हैं, संदृष्टि बनाई। ये सब अनंतों का मामला है, फिर भी ये पहली वर्गणा के परमाणु की संख्या 256 मानी, फिर एक एक चय से घटती चली जाएगी, फिर वो आधी होगी, चय भी आधा होगा, फिर आधे से आधा, आधे से आधा, तो अंतिम वर्गणा में 9 परमाणु है। ये उन्होंने मानी हुई संदृष्टि है। अब इस संदृष्टि के आधार से ये सब 6 प्ररूपणाएं बताएंगे। तो कहते संदृष्टि में स्थापित कर, यानी उन्होंने काल्पनिक संख्याएं बनाकर इसके ऊपर अज्ञानी जनों के अनुग्रहार्थ हमारा उपकार करते हैं आचार्य। छह अनियोग द्वारों को कहते हैं। जघन्य वर्गणा में दिए गए कर्म प्रदेश है, बस है इतना कहना ये प्ररूप ना हो गए, वो कितने हैं क्या है वो प्रमाण में बताएंगे। द्वितीय वर्गणा में दिए गए कर्म प्रदेश हैं, इस प्रकार उत्कृष्ट वर्गणा तक ले जाना चाहिए। उत्कृष्ट वर्गणा यानी अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा। प्ररूपना समाप्त हुई, यानी हर एक में कर्म प्रदेश है, बस ये प्ररूपना हो गए। अब वो कितने होते हैं वो प्रमाण में बताएंगे। जघन्य वर्गणा में दिए गए कर्म प्रदेश अनंत है। जघन्य वर्गणा का अर्थ क्या देखा था, पहले स्पर्धक का पहली वर्गणा, उसमें नंबर ऑफ परमाणु कितने, तो अनंत है। कितने अनंत है, तो अभव्य सिद्धों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत वे भाग मात्र है। ये अनंत, ये सॉरी अभव्य सिद्ध कितने हैं, प्रेरणा बिन याद है आपको, जघन्य युक्त अनंत होते हैं। यानी उससे अनंत गुणा और सिद्ध वाला जो अनंत राशि है उससे अनंत वा भाग, ये बीच वाले अनंत उसमें होते हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट वर्गणा तक ले जाना चाहिए। देखो थोड़े थोड़े हीन होते हैं, फिर भी प्रत्येक वर्गणा में कितने पूछेंगे, तो अभवों से अनंत गुणे सिद्धों के अनंत विभाग, उसमें भी चय घटते हुए जाएंगे, फिर भी कितने अंतिम भी वर्गणा में कितने प्रदेश है कहेंगे, तो अभवों से अनंत गुणे और सिद्ध राशि के अनंत विभाग, ये उसका कथन है। इसका हाँ देखो प्रमाण प्ररूपना समाप्त हुई। अब श्रेणी प्ररूपना, श्रेणी यानी वो पंक्तिबद्ध जो रचना हमने एक एक वर्गणा की है, तो उसमें क्या प्रोपोर्शन, क्या क्या बातें होती है उसकी बताएंगे। तो कहते अनंत रोपनिधा और परम्परोपनिधा। अनंतर यानी इमीडिएट नेक्स्ट, उपनिधा और परंपरा ने कितने स्थान जाने पर वो आधा होता है उसको कहेंगे परंपरोपनिधा। अनंतरोपनिधा की अपेक्षा जघन्य वर्गणा में कर्म प्रदेश बहुत है, यानी सर्वाधिक कर्म प्रदेश पहली वर्गणा में होते हैं, उनसे द्वितीय वर्गणा में कर्म प्रदेश विशेषहीन है। विशेषहीन को हमने क्या नाम देखा था याद है ब्रह्मा, चय 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 कहते हैं, प्रचय कहते हैं, चार नाम है, हाँ बोलो और उत्तर, चार नाम है उसके। तो कहते द्वितीय वर्गणा में कर्म प्रदेश विशेषहीन है, यानी थोड़े कम है। इस प्रकार उत्कृष्ट वर्गणा तक उत्तरोत्तर विशेषहीन है, आगे आगे वो हीन 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 होते गए हैं। विशेष का प्रमाण देखो, ये चय का भी प्रमाण अभव में सिद्धों से अनंत गुणा और सिद्धों के अनंत वे भाग मात्र है, यानी परमाणु भी उतने ही होते हैं और चय का प्रमाण भी आप वो उतना ही है, पर उसका अनंत वा भाग होगा क्योंकि अनंत वर्गणाएं अनंत होती है। अरे एक स्पर्धक में अनंत होती है और ऐसे स्पर्धक अनंत होते हैं, यानी टोटल वर्गणाएं अनंत अनंत हो गई, तो मूल में उसमें परमाणु कितने थे, अभव्य राशि से अनंत गुणा, और चय भी अभव्य राशि से अनंत गुणा, कितने बार घटा, अनंतो बार घटा, फिर भी अंत में कितना रहा, अभव्य राशि से अनंत गुणा। यानी वो वेरिएशन कितने, अनंत के वेरिएशंस भी कितने हैं। तो विशेष का प्रमाण, चय का प्रमाण भी इतना बताया। इसका प्रतिभाग भी, प्रतिभाग का अर्थ क्या होता है, हम कहते हैं अनंत वा भाग घटा, तो मूल संख्या कितनी थी, अभव्य राशि से अनंत गुणा, और उसको कौन सी संख्या से भाग दिया, अभव्य राशि से अनंत गुणा से, तो उत्तर एक नहीं आया, उत्तर भी अभव्य राशि से अनंत गुणा है। ये कह रहे प्रतिभाग का अर्थ, इसका प्रतिभाग भी अभव्य सिद्धों से अनंत गुणा और सिद्धों के अनंत वे भाग मात्र है, वह भी तीन प्रकार का है। फिर से और विशेष का प्रमाण ने चय प्रतिभाग का अर्थ ऐसा है। देखो पहली वर्गणा में जितने प्रदेश हैं, अभी हमको वो चय का प्रमाण निकालना है। चय का प्रमाण कैसे निकालते हैं? किसी संख्या से भाग देकर निकालते हैं। तो ओरिजिनल कितनी संख्या? अभव्य से अनंत गुणा और सिद्धों का अनंत भाग। उसको कौन सी संख्या से भाग देंगे? वो भी अभव्य राशि से अनंत गुणा है, क्योंकि हमने देखा था पहली वर्गणा को डेढ़ गुणहानि से भाग देंगे तो हमें चय का प्रमाण आएगा। तो डेढ़ गुणहानि, एक गुणहानि भी अभव्य राशि से अनंत गुणा होती तो डेढ़ गुणहानि भी उतनी कहेंगे ना। यानी ओरिजिनल वाला बहुत बड़ा अनंत है, ये छोटा अनंत है, उससे भाग देने पर चय भी अनंत में ही आया। सबका प्रमाण सामान्य से क्या कहेंगे? अभव्यों से अनंत गुणा, सिद्धों से अनंत विभाग। यानी उसमें अनंत वेरिएशन हो गए कितने, समझ में आई बात? ये प्रतिभाग का अर्थ है। जैसे हमने देखा था यहाँ उन्होंने संदृष्टि बनाई है, बाद में बताएंगे 256 उन्होंने परमाणु माने हैं, और 256 है तो उसको जो डेढ़ गुणाने का भाग देकर वहां जो उसको दो गुणा निषेक भागहार से भाग देते हैं, डेढ़ गुणानी नहीं, डेढ़ गुणानी तो टोटल नंबर ऑफ परमाणुओं को देते, सॉरी यहाँ तो दो गुणानी का भाग देते हैं। 256 को दो गुणानी 16 का भाग देंगे तो 16 ही चय आएगा, ये कहना चाहते। तो एक गुणानी भी अभव्यों से अनंत गुणी, दो गुणानी भी उससे दो गुणा, उसका भाग देकर जो प्रमाण आया वो भी करीबन वैसा ही कहेंगे। तो वह भी तीन प्रकार का है। ये विशेषहीन का जो प्रमाण निकालने के लिए जिस संख्या से भाग देते हैं वो भी तीन प्रकार का है, अवस्थित भागहार, रूपोन भागहार और छेद भागहार। किसका प्रमाण निकालना है हमको? चय का। अवस्थित भागहार का अर्थ क्या होता है? फिक्स भागहार, उसी भागहार से भाग दो। जैसे हमने 256 को निषेक भागहार दो गुणहानी से भाग दिया तो प्रमाण 16 आया। अभी 16 आया तो दूसरी वर्गणा में परमाणु कितने आए? 16 से ही, यानी 240 हो गए। तो 240 को कौन सी संख्या से भाग देना है?
साधिक 16 से।
सोलह से ही देंगे तो अवस्थित होगा।
सोलह से अवस्थित,
तो वो अवस्थित के लिए क्या करना? इसी को फिर दोबारा और भाग देना, यानी इसमें दो चय कम करना। एक चय कम किया, दो चय कम किया, तीन चय कम किए, इसे उसी 16 से ही भाग देते रहो। या अब इसको 16 - 1 = 15 से भाग दो, तो इसको 15 से भाग देंगे तो प्रमाण 16 ही आने वाला है, ये कह रहे हैं। 15 से भाग देंगे, यहाँ निषेक भाग आ रहे हैं दो गुणानी, यहाँ -1, तीसरे के लिए 14 से भाग देंगे, चौथे के लिए 13 से भाग देंगे, इसी पद्धति से चलेंगे। ये रूपोन भागार होता जाएगा। छेद में अपूर्णांकों में आता है, हाँ अपूर्णांकों में आ जाता है, अपूर्णांकों में भागार, छेद भागार अपूर्णांकों में आता है। अवस्थित भागार ने 16 से भाग देंगे, किसको? 256 को। 256 में से एक चय घटाए, दो चय घटाए, तीन चय घटाए, इस तरह से जाएंगे। 256 को ही भाग देंगे और रूपों में आगे आगे वाले वर्गणाओं की संख्या उसमें भाग देंगे हम। देखो ये पाएंगे, बताएंगे तो तीन भागारों द्वारा अनंत रूप निधा को जानकर प्ररूपणा करनी चाहिए। अब परंपरोपनिधा की अपेक्षा, परंपरोपनिधा ने कितने स्थान जाकर वो आधा होता है? जघन्य वर्गणा के कर्म प्रदेशों की अपेक्षा अभव्य सिद्धों से अनंत गुणे व सिद्धों के अनंत वे भाग मात्र स्थान जाकर दुगुणी हानि होती है। यानी इतनी वर्गणाएं जाने पर वो उनकी संख्या आधी हो जाती है। इस प्रकार अंतिम दुगुण हानि तक, अंतिम दुगुण हानि यानी वो दो गुण हानि एक बार हुई, यानी आधा एक बार हुआ, आधे का आधा हुआ, फिर आधे का आधा हुआ, इस तरह से कितनी बार गुण हानि होती, दो गुण हानि यानी आधा आधा होना। अंतिम दुगुण हानि यानी जो नंबर ऑफ गुण हानियां होगी जिसको हम नाना गुण हानियां कहते हैं, तो अंतिम दुगुण हानि तक उत्तरोत्तर दुगुणे दुगुणे हीन कर्म प्रदेश है। यानी पूरे टोटल गुण हानि के भी प्रदेश आधे आधे होते हैं, या प्रथम वर्गणा से वो वहाँ की जो वर्गणा है उसमें आधे होते हैं, प्रत्येक गुणहानि में आधे आते होते चले जाएंगे, ये उसका अर्थ है। यहाँ दुगुण हानि का विधान कहते हैं, वो किस प्रकार होते हैं उसको यहाँ बताएंगे। यथा अभव्य सिद्धों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत वे भाग मात्र निषेक भागहार, निषेक भागहार है दो गुणहानियाँ, क्योंकि पहले शब्द बहुत बार आ चुके हैं ना, निषेक भागहार के अर्थ होता है दो गुणहानियाँ। यह संदृष्टि में एक गुणहानि आठ की मानते हैं, वो संदृष्टि भले स्थिति की हो या अनुभाग की हो उसमें कोई चेंज नहीं, वो गुणहानि के लिए आठ ये संख्या उन्होंने संदृष्टि रूप से मानी हुई है, परंतु आठ कहने से उसका प्रमाण बहुत बड़ा है, वो तो हाँ, अनंत गुणा है। तो निषेक भागहार विरलन करके, निषेक भागहार का चाहिए ना, हाँ का शब्द चाहिए, निषेक भागहार का यानी दो गुणहानि का, दो गुणहानि ने 16 का विरलन करो, विरलन करो यानी 16 बार एक 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 लिखो। जघन्य वर्गणा के प्रदेशों को हमने कितने माने हैं प्रदेश, 256, यानी 16 बार एक एक लिखो और 256 उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो हर एक एक के माथे में कितने आ जाएंगे, हाँ 16 आ जाएंगे। जघन्य वर्गणा के प्रदेशों को समखंड करके देने पर विरलन अंक के प्रति वर्गणा विशेष का प्रमाण प्राप्त होता है, जिसको हम चय कहते हैं। वर्गणा विशेष यानी डिफरेंस बिटवीन दो वर्गणाएं, किस अपेक्षा से, प्रदेशों की अपेक्षा से, अनुभाग की अपेक्षा से तो एक का डिफरेंस है, प्रदेशों की अपेक्षा से तो चय का डिफरेंस है। पुनः इसमें से एक अंक के ऊपर रखी हुई राशि को ग्रहण कर जघन्य वर्गणा में से कम कर देने पर द्वितीय वर्गणा का प्रमाण प्राप्त होता है। देखो ये कैसे समझना है उसको, उसके बाद हम देख लेते हैं। यहाँ पर पहले हमें क्या करना है, एक 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 16 बार लिखना है और उसमें 256 हमको डिवाइड कर देना है, तो 256 बटे 16, हर एक के माथे पर 16, नहीं नहीं हाँ 16 आ जाएगी। हाँ ये 16 आ जाएगी, 16 आ जाएगी, 16 दे दी। अब यहाँ इस अभी क्या करना, अब इसमें से एक अंक के ऊपर रखी हुई राशि को ग्रहण कर जघन्य वर्गणा में से कम कर देने पर, हमारी जघन्य वर्गणा है 256 की, उसमें से 16 गए तो 240 हो गए। यहाँ तक समझ में आई बात, द्वितीय वर्गणा का प्रमाण प्राप्त होता है। इस प्रकार एक एक अंक के ऊपर रखी हुई राशि को उत्पन्न उत्पन्न वर्गणा में से यानी उत्तरोत्तर वर्गणा में से कम करके निषेक भागहार का अर्ध भाग समाप्त होने तक ले जाना चाहिए। निषेक भागहार का अर्थभाग है ना एक गुणहानि, फिर से निषेक भागहार कितना माना हमने, 16। निषेक भागहार किसको कहते, दो गुणहानियों को निषेक भागहार कहते, निषेक भागहार का अर्ध का अर्थ होता है एक गुणहानि। तो कहते कि 240 आए, फिर 240 में से 16 कम कर दो, फिर जो आई संख्या 224 में से 16 कम कर दो, इस तरह से एक गुणहानि तक यानी 8 बार ऐसे कम करने पर ये 256 है वो 128 हो जाते हैं, क्योंकि देखो 8 बार कम किए ना 256 को, 8 बार 16 यानी 16 28 से 128 माइनस कर दे तो 128 रह जाएंगे, यानी जब आधे इसमें से 16 घटाते 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 8 स्थान जाने पर 128 रहेंगे। ये एक गुणहानि गई, इसको ही को कहते हैं निषेक भागहार के आधे प्रमाण आगे चले गए। वहां की वर्गणा के कर्म प्रदेश प्रथम वर्गणा के कर्म प्रदेशों की अपेक्षा दुगुणहीन, दुगुणहीन का अर्थ होता है आधे, दो गुणाहीन। फिर इस दुगुणहीन वर्गणा के कर्म प्रदेश पिंड को, ये 128 आया ना, अवस्थित भागहार के समखंड करके देने पर, ये अवस्थित भागहार है ना हमारा निषेक भागहार, चय निकालने के लिए जो निकाला, मैंने पहले जो बताया था वो अलग था, वो एक एक वर्गणा वर्गणा के प्रति निकालने के लिए उसकी भी बात अलग आती है। यह है हर बार जो हमको चय निकालना है कहीं का भी, तो अब एक गुणहानि बीत गई तो 256 के बदले 128 हुए। अवस्थित भागार वही होगा, कौन सा? 16। तो निषेक भागार का भाग दिया, पहले हमने 256 को 16 से भाग दिया तो 16 आए थे, यानी वो पहले गुणहानि में चय का प्रमाण 16 था, हर बार 16-16 घटे थे। जब 128 प्रमाण आ गया, अब उसी 16 से उसको भाग दो तो 8 संख्या आ जाएगी। अभी चय का प्रमाण 8 हुआ तो 128 माइनस 8 120 आए, माइनस 8 112 आए, तो 8-8 कम करते चले जाना। तो कहते फिर पढ़ती हूँ मैं इसको नीचे से, चौथी लाइन वो पैराग्राफ की। फिर इस दुगुणे हीन वर्गणा के कर्म प्रदेश पिंड को, यानी वहां कितने आए हमारे? 128 आए। अवस्थित भागहार के समखंड करके देने पर, यानी निषेक भागहार का, अवस्थित भागहार यानी 16 का, एक एक अंक के प्रति एक एक वर्गणा विशेष का प्रमाण प्राप्त होता है। हमारी भाषा में 128 को 16 से भाग दिया तो 8 आए, तो यहां वर्गणा विशेष का प्रमाण 8 आया। विशेष इतना है कि प्रथम गुणहानि के विशेष से, प्रथम गुणहानि में विशेष का प्रमाण हमने 16 देखा था, यह विशेष जो 8 है वो दुगुणाहीन है, यानी 16 का दुगुणाहीन यानी 16 का आधा 8 हो जाता है, क्योंकि अवस्थित भागहार के द्वारा पूर्व में विभक्त हुई राशि का आधा भाग क्षीण होता हुआ देखा जाता है। क्या कहने चाहते हैं? पहली राशि 256 थी और भागहार उतना ही था 16, भागहार उतना ही रखा और राशि आधी हुई, तो नेचुरल लब्ध राशि उतनी आधी आने वाली है, क्योंकि 16 का भागहार 16 ही रखा है, तो जो आने वाला प्रमाण है वो आधा हो गया, ये चय आधा हो गया हमारा। यहां एक अंक के ऊपर रखी हुई राशि को ग्रहण कर, यानी यहां क्या करना है हमको, यहां पर भी 16 का विरलन किया और उसमें 128 बांट दिए, तो हरेक के ऊपर क्या आया? पहले 16-16 आए थे, अभी इसमें 128 हमने बांट दिए तो हरेक के ऊपर 8-8 आ गए। इसको कहते हैं एक एक के प्रति जो 8-8 जो राशि थी, फिर से पढ़ते, एक अंक के ऊपर रखी हुई राशि को यानी 8 को आपको उसमें वैल्यू डालनी है, तो उसमें 8 लिखो आप। द्वितीय गुणहानि की प्रथम वर्गणा में से यानी 128 में से कम कर देने पर उसकी ही तदनंतर द्वितीय वर्गणा का प्रमाण प्राप्त होता है। पहले वर्गणा में हमने पहली एकदम पहले स्पर्धक नहीं कहेंगे, पहली गुणहानि कहेंगे, पहले गुणहानि की पहली वर्गणा 256 थी, उसमें से हमने 16 माइनस किए तो दूसरी वर्गणा आई थी। अब हम कहाँ चले गए? दूसरी गुणहानि में चले गए। दूसरी गुणहानि की पहली वर्गणा कितनी? 128 की है। अभी 128 में से हमको 8 माइनस करना है तो दूसरे गुणहानि की दूसरी वर्गणा 120 वाली आ जाएगी। इस प्रकार यहां पर भी एक एक विशेष को कम करके अवस्थित भागहार के अर्धभाग प्रमाण विशेषों को क्षीण होने तक, यानी अवस्थित भागहार हमारा 16 है, उसका आधा होता है 8, यानी 8 बार उसको घटाते चले जाना, यानी 8 को 8 बार घटाया तो 128 में से 64 गए तो 64 बाकी रहेंगे, वहां दुगुनी हानि होती है, क्योंकि एक बार हानि हुई तो 256 का आधा 128 हुआ, अब दूसरी बार दुगुनी हानि हुई तो 128 का 64 हो गया। इस प्रकार जानकर, तो एक बार दुगुनी हानि, दो बार दुगुनी हानि, इस प्रकार जानकर अभव्य सिद्धों से अनंत गुणी और सिद्धों के अनंत वे भाग मात्र दुगुण हानियों के उत्पन्न होने तक ले जाना चाहिए, जिसको हम दूसरी भाषा में नाना गुणानिया कहते हैं। कितने बार आधा आधा हुआ? तो कहते अभव्यों से अनंत गुणा इतनी बार वो आधे का आधा, आधे का आधा हुआ। देखो एक गुणहानि का प्रमाण भी वैसा ही कहते, कथन में तो वही बात आती है कि अभव्यों से अनंत गुणा वाला, और नंबर ऑफ गुणहानियां कितनी वो भी अभव्यों से अनंत गुणा, उसमें जो तरतमता वो बताएंगे। यहां तीन अनियोग द्वार है, परंपरोपनिधा की बात है ना, तो उसमें तीन अनुयोग द्वार है, प्ररूपणा, प्रमाण और अल्पभूतव। प्ररूपणा अवगत है, प्ररूपणा क्योंकि उसकी तो बात परंपरोपनिधा की चल रही है, क्योंकि एक गुणहानि स्थानांतर और नाना गुणहानि स्थानांतर का डालो वहां पर, अस्तित्व परंपरोपनिधा से ही सिद्ध है। क्या कहना चाहते हैं, परंपरोपनिधा हमारा विषय चल रहा है। परंपरोपनिधा का अर्थ ही क्या है, एक ही गुणहानि जाने पर वो आधा आधा हो रहा है, और ऐसे अनेक गुणहानि है, इन्हें नाना गुणहानियां भी होती है, इन्हें परंपरोपनिधा कहते हैं। उसका अर्थ यहाँ एक एक गुणहानि का भी प्रमाण है और ऐसे अनेक गुणहानियां भी हैं। एक गुणहानि स्थानांतर का अर्थ होता है एक गुणहानि, नाना गुणहानि स्थानांतर का अर्थ होता है नाना गुणहानियां, उनका अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। अब आते हैं 104 पेज पर। यहां तक समझ में आई, कोई प्रश्न है तो पूछ लेना। अब प्रमाण का कथन करते हैं। प्रमाण ने दोनों जगह उसका प्रमाण अभिव्यंग से अनंत गुणा ही कहा है, नाना गुणहानि के लिए भी और एक गुणहानि के लिए भी। उसका अल्पभूत में फिर कहेंगे कौन सा बड़ा है छोटा है। देखो प्रमाण का कथन करते हैं, नाना प्रदेश गुणहानि स्थानांतर शलाकाओं और एक प्रदेश गुणहानि स्थानांतर का प्रमाण अभव्य सिद्धों से अनंत गुणा और सिद्धों के अनंतवे भाग मात्र है, प्रमाण प्ररूपणा समाप्त हुई। वो कौन सा बड़ा छोटा यहाँ नहीं कहा, वो अल्पभूत्व में कहेंगे। अब ये अल्पभूत्व का कथन करते हैं फिर से, यानी एक गुणहानि और नाना गुणहानियां, बस इतना। प्रदेश गुणहानि क्योंकि यहाँ प्रदेशों की अपेक्षा कथन चल रहा है। हमने देखा ना, एक जैसे हमने एक गुणहानि के लिए कितना कहा, आठ कहा, अभी वो इतना यहाँ कितनी गुणहानियां मानी है उन्होंने, देखो 256 से एक पहली गुणहानि थी, 128 से दूसरी गुणहानि चालू हुई, 64 से तीसरी चालू हो गई, 32 से ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, 16 तक आए, 16 से 9 तक आए यहाँ पर, यानी एक दो तीन चार पाँच, चार कैसे, पांच गुणहानियां हुई ना। बत्तीस वाले कैसे, नौ तक कैसे पहुंचाएंगे। देखो 256 से 128 हुआ, 128 से 64 दूसरी, 64 से 32 तीसरी, 32 से 16 चौथी, यहाँ आठ अगर होता तो नई शुरुआत होती। इसका अंतिम वर्गणा का प्रमाण यह नौ है, पांच गुणहानियां हुई, तो पांच गुणहानियां उसको कहेंगे नाना गुणहानियां, और एक गुणहानि का प्रमाण हमने यहाँ आठ माना हुआ था। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, उसमें अल्पभूत बताएंगे, नाना प्रदेश गुणहानि स्थानांतर शलाकाएं, ये प्रदेशों की अपेक्षा कितने वर्गणाए जाने पर आधा होता है और ऐसी कितनी बार होता है, उसको नाना गुणहानि प्रदेश, नाना प्रदेश गुणहानि स्थानांतर कहा। शलाकाएं उसके नंबर, यानी नंबर ऑफ गुणहानियां, सादा बोलना है तो नाना गुणहानियां सबसे स्तोक है, और उनसे एक प्रदेश गुणहानि स्थानांतर अनंत गुणा है, यानी एक गुणहानि में नंबर ऑफ वर्गणाएं उससे भी अनंत गुणे हैं। गुणकार क्या है, अभी सब जगह वही एक शब्द आ रहा है, अब सिद्धों से अनंत गुणा और सिद्धों के अनंतवे भाग प्रमाण है। इस प्रकार श्रेणी प्ररूपणा समाप्त हुई। श्रेणी प्ररूपणा में अनंतरोपनिधा और परंपरोपनिधा बताई उन्होंने, ये सब बातें प्रदेशों की अपेक्षा चल रही है। ये प्रदेश किसमें, वर्गणाओं में। अब अवहार का कथन करते हैं। अवहार का अर्थ होता है कौन सी संख्या से टोटल नंबर ऑफ परमाणुओं को भाग देंगे तो उस वर्गणा के परमाणुओं का प्रमाण आएगा। जैसे सबसे पहली वर्गणा जो है हमने 256 माने हैं, और टोटल नंबर ये यहाँ कहेंगे अभी 3072 है टोटल, तो उसके कौन सी संख्या से भाग देंगे तो 256 संख्या आएगी, उसको कहेंगे उसका अवहार काल। देखो उसका कथन करते हैं। प्रथम वर्गणा के कर्म प्रदेशों के प्रमाण से जो हमने 256 मान लिया है, सब वर्गणाओं के कर्म प्रदेश, सब वर्गणाओं के कर्म प्रदेश वो आगे चलकर बताएंगे 3072 होते हैं, कितने काल द्वारा अपहृत होते हैं। यहाँ काल का कोई सवाल नहीं है, परंतु जहां भागहार का प्रमाण होता है, वो भागहार का प्रमाण हम काल में कहने की पद्धति है। तो कौन सी संख्या से 3072 को भाग देंगे तो 256 आएगा, तो कहते 12 से भाग देंगे। यहां कहते हैं, फिर से पढ़ती हूं मैं, अवहार का कथन करते हैं, यानी ऐसी संख्या लेना है कि टोटल नंबर ऑफ परमाणु, टोटल ने सभी वर्गणाओं के सभी परमाणु मिलकर जो संख्या होती है उसको कौन सी संख्या से भाग देंगे तो हमें प्रथम वर्गणा का प्रमाण मिलेगा। समझ में आई ना बात? इसको, उस संख्या को कहेंगे अवहार, और उसी को अवहार काल कहने की भी पद्धति है। तो कितने काल के द्वारा अपहृत होते हैं, यानी कितने काल के द्वारा उसको भाग देंगे हम, अनंत काल द्वारा अपहृत होते हैं। क्योंकि अनंत क्यों कहा, अनंत काल है ना, यहाँ कितना काल जाएगा उसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो डेढ़ गुणाने का प्रमाण कितना है तो वो अभव्यों से अनंत गुणा वाली बात है, तो उसी को कहते हैं अनंत काल। क्योंकि सब द्रव्य को प्रथम निषेक के प्रमाण से करने पर डेढ़ गुणहानी मात्र प्रथम निषेक पाए जाते हैं। यानी अगर प्रथम निषेक के प्रमाण से करना, इसका अर्थ होता है टोटल द्रव्य 3072 है और उसको प्रथम निषेक 256 से भाग देंगे तो 12 आएगा, जिसको हम डेढ़ गुणहानी कहेंगे। यहाँ डेढ़ गुणहानी मात्र प्रथम निषेकों के उत्पादन की विधि जैसे द्रव्य विधान में कही गई है वैसे कहकर ग्रहण करना चाहिए। यानी वो सब विधि हमने पहले देख ली, कौन सी पुस्तक में, 10वीं पुस्तक में देखी ना हमने, द्रव्य विधान वहां था, 11वीं में क्षेत्र विधान और काल विधान था, वेदना का क्षेत्र और काल विधान 11वीं पुस्तक में था। यानी 10वीं पुस्तक में हमने बहुत विस्तार से देखा था इसको। द्वितीय वर्गणा के यानी 3072 को डेढ़ गुणहानी, एक गुणहानी होती है 8 की, डेढ़ गुणहानी है 12 की, तो 3072 डिवाइडेड बाय 12 तो उसका 256 उत्तर आता है प्रथम निषेक। द्वितीय वर्गणा के कर्म प्रदेश प्रमाण से सब वर्गणाओं के कर्म प्रदेश कितने काल द्वारा अपहृत होते, देखो यहाँ कहना कह जाते हैं, यहाँ हमें भागहार का प्रमाण निकालना है। 256 जब हमको प्रमाण चाहिए तो 3072 को 12 से भाग देंगे तो 256 आते हैं। अभी हमको यहाँ छोटी संख्या चाहिए, द्वितीय वर्गणा में कितने प्रदेश है, 204, द्वितीय वर्गणा में 240, 16 कम है ना, तो मुझे बताओ ये भागहार बढ़ेगा कि छोटा होगा, बढ़ेगा, क्योंकि लब्ध राशि छोटी चाहिए, ये भागहार बढ़ेगा। छेद भागहार वो तो हो जाएगा, परंतु अभी इसका प्रमाण कैसे निकालेंगे, ये प्रमाण निकालने की विधि बताएंगे। अभी साधिक होगा, वो 12 में साधिक होगा, वो साधिक का प्रमाण कितना है उसके लिए पद्धति बताएंगे, ये विरलन करना किसे क्या क्या निकल, बहुत आसान है वो, हमने बहुत बार वो द्रव्य विधान में देखा भी है। अभी इसको पढ़ेंगे यहाँ से तो और समझ में आ जाएगी बात। देखो तो कहते हैं द्वितीय वर्गणा के कर्म प्रदेश प्रमाण से, यानी द्वितीय वर्गणा के कर्म प्रदेश कितने, अभी 240 है, आपको वहां लिखना है तो लिखो तो सरल हो जाएगा। सब वर्गणाओं के कर्म प्रदेश यानी 3072 कितने काल द्वारा अपहृत होते हैं, हम डायरेक्ट 3072 को 240 से भाग दे सकते हैं, हमारा जो कुछ अपूर्णांक 12 पूर्णांक समथिंग जो है वो निकलेगा। तो वो कहते हैं साधिक डेढ़ गुणानी स्थानांतर काल द्वारा अपहृत होते हैं, यानी 12 में कुछ अधिक हो जाता है यथा। अब वो संदृष्टि के आधार से समझाएंगे, संदृष्टि में सब वर्गणाओं का द्रव्य यह है 3072, उन्हीं की संदृष्टि मैंने आपको पहले बताए थे। प्रथम वर्गणा के भागहार स्वरूप डेढ़ गुणहानी का प्रमाण यह है 12, एक गुणहानी हमने 8 मानी है, 8 से डेढ़ गुणा 12 होते हैं, तो 12 से भाग देंगे तो 256 हमें पहले वर्गणा का प्रमाण मिलता है। अब क्या करना है, डेढ़ गुणहानि का विरलन करना। विरलन करना का अर्थ हमने क्या देखा था, एक एक में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किसका विरलन करना है, डेढ़ गुणहानि का, डेढ़ गुणहानि यानी 12 का। तो हम 12 बार एक एक लिख लेंगे, 12 बार लिखे। अब इसमें क्या करना है, टोटल द्रव्य उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कितना है टोटल द्रव्य, 3072। तो 3072 12 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हर एक के माथे पर 256 आएंगे, ये हर एक के माथे पर आ जाएंगे। यहां तक समझ में आई बात, डेढ़ गुणहानि का विरलन किया, उसमें पूरा द्रव्य समखंड करके दे दिया। यहां से पढ़ते देखो, यथा, ये तो नीचे से तीसरी लाइन, वहां से पढ़ेंगे, डेढ़ गुणहानि का विरलन कर समस्त द्रव्य को समखंड करके देने पर एक अंक के प्रति प्रथम वर्गणा के कर्म प्रदेशों का प्रमाण प्राप्त होता है। हमारे हर एक एक के प्रति 256 आ गए। हमें क्या करना है, अभी हमें दूसरी वर्गणा का हमको भागार निकालना है। इसका भागार तो 12 बराबर है, फिर उन डेढ़ गुणहानि मात्र प्रथम वर्गणाओं को, ये प्रथम वर्गणाएं कितनी बार आई, 12 बार आई, उनको द्वितीय वर्गणा के प्रमाण से अपहृत करने पर एक एक के प्रति एक एक वर्गणा विशेष अवस्थित रहता है। क्या करना, इसमें से अगर हम 240 निकाल लेते हैं तो यहाँ बाकी क्या रहेगा, 16 बाकी रहेगा, यानी 12 बार 240 मिले और हर एक में 16 वहां बाकी रहे, तो 16 कितनी बार रहे, 12 बार रहे। समझ में आती बात, हर एक 256 को हमने 240 किया तो 240 भी 12 बार आ गए, और 16 हर एक में से 16 रहे तो कितनी बार 16 रहे, तो 12 बार रहे। यहां तक समझ में आई बात क्या, नहीं आई जेपी? हाँ देखो देखो क्या कहते हैं, उन डेढ़ गुणहानि मात्र प्रथम वर्गणाओं को द्वितीय वर्गणा के प्रमाण से अपहृत करने पर एक एक के प्रति एक एक वर्गणा विशेष अवस्थित रहता है। हर एक के ऊपर 16 बाकी रहे, हमने हर एक में से 240 वाली दूसरी वर्गणा निकाल ली। अब यहाँ अपनित द्वितीय वर्गणाएं डेढ़ गुणहानि मात्र होती है। यहां से हमने निकाली ना, कितनी निकाली, 12 निकली, यह द्वितीय वर्गणाएं 12 बार निकली। अब कहते अपनयन से शेष रहे, अपनयन करना है ने उसको माइनस करना, अपनयन से शेष रहे वर्गणा विशेष निश्चय, क्योंकि उसमें एक एक चय बाकी रहा, 16 बाकी रहे का अर्थ क्या है, एक एक चय बाकी रहा था, वो चय भी कितने मिले, 12 मिले, तो वर्गणा विशेष भी डेढ़ गुणहानि मात्र होते, यानी 16 × 12 192 हो जाते वहां पर। ये सभी द्वितीय वर्गणा के प्रमाण से अपहृत होकर एक भी द्वितीय वर्गणा के प्रमाण को पूरा नहीं करते। क्या कहना चाहते हैं, ये 12 बार 16 मिले तो इनकी वैल्यू कितनी हुई, 16 × 12, 16 × 12 कितने होते हैं, 192 होते हैं। हमको कितने चाहिए, 240 चाहिए, और हमें मिले कितने, 192, पूरा मिलना नहीं है तो आधा अधूरा द्वितीय मिल गया। समझ में आती है बात, फिर से यहां देखो, एक वर्गण द्वितीय वर्गणों को पूरा नहीं करते क्योंकि एक कम निषेक भागार प्रमाण विशेषों का आश्रय कर एक द्वितीय निषेक उत्पन्न होता है। अभी इसका अर्थ समझते हैं, कितने 16 होते तो हमको 240 मिलते, कितने चय होते तो दूसरा निषेक मिलता, दूसरा निषेक नहीं दूसरे वर्गणा कहना मुझे, 15 क्योंकि पहली वर्गणा के लिए हमें निषेक भागार ने 16 चय चाहिए, निषेक भागार इंटू चय 16 × 16, चय भी 16 है और निषेक भागार ने दो गुणानी भी 16 है, 16 × 16 256 आते। दूसरा वर्गणा का निकलने के लिए क्या है, निषेक भागार जो 16 थे उसमें से एक कम कर दो, 15 गए, तो 15 × 6, 15 चयों की एक द्वितीय वर्गणा होती है, 15 चयों की हम चय लिखेंगे, 15 चयों की एक द्वितीय वर्गणा होगी, और हमारे पास कितने मिले हैं चय, 12 ही मिले हैं, तो 12 चाहिए उनकी कितनी मिलेगी? तो द्वितीय वर्गणा आधी अधूरी होगी, कितनी हो गई? तो 12 के 12 डिवाइडेड बाय 15, 12 15 अंश होगी, 12 15 अंश है ने, 3 चौक 12, 3 5 15, 4 पंचम अंश, यानी द्वितीय वर्गणा कितनी मिली हमको इस सब में से? 12 तो पूरी मिली थी और 12 पूर्णांक 4 पंचम अंश मिली। हाँ, डायरेक्ट भी निकालो ना, देखो ऐसा निकालो, वो पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं। 15 चायों से एक द्वितीय वर्गणा मिलती है, तो हमारे पास 12 ही चाय है, तो 12 चायों में कितनी मिलेगी? तो 12 बटे 15 मिलेगी, तो 4 पंचमांश द्वितीय वर्गणा मिली। तो हमें कितने द्वितीय वर्गणाएं मिली? यहाँ नीचे तो 12 पूरी मिली और एक अधूरी मिली 4 पंचमांश, यानी टोटल द्वितीय वर्गणाएं कितनी मिली? 12 पूर्णांक 4 पंचमांश मिली, यानी यहाँ का भागार कितना होगा? 12 पूर्णांक 4 पंचमांश। समझ में आई बात? फिर से इसको पढ़ दे, देखो यहां लिखा है ना, सेकंड लाइन लास्ट, ये सभी द्वितीय वर्गणा के प्रमाण से अपूर्वत होकर, यानी हमें जो जो चय मिला ना, 16 16 चय है, वो 12 चय मिले, तो 16 जो संख्या है 12 बार मिलकर एक पूरा 240 नहीं मिलता, 192 भी मिलते हैं हमको, एक भी द्वितीय वर्गणा के प्रमाण को पूरा नहीं करते, क्योंकि एक कम निषेक भागहार प्रमाण, एक कम निषेक भागहार ने 16 माइनस 1 15 प्रमाण, विशेषों का आश्रय कर, विशेष का प्रमाण भी 16 है, तो 15 बार 16 होते तो एक द्वितीय निषेक उत्पन्न होता है, परंतु डेढ़ गुणहानी मात्र विशेष, यानी 12 मिले हमको चय जो है 12 मिले, एक कम निषेक भागार मात्र विशेष नहीं होते, यानी जो 12 चय है वो 15 चय नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें 3 चय कम है, है ना, क्योंकि गुणहानि के एक अंक कम अर्धभाग मात्र विशेषों से हीन के उतने मात्र होने का विरोध है। यहाँ कहते हैं 12 संख्या 15 नहीं हो सकती, कितने से कम है 12 संख्या? 3 से कम है, 3 क्या कहे हैं? तो गुणहानि के आधा आधा 4 होता है और 4 में एक कम 3 होते हैं। ये इसका वाक्य का अर्थ ही नहीं समझ में आता है, देखो देखो फिर से, परंतु डेढ़ गुणहानि मात्र विशेष, यानी 12 निषेक, 12 विशेष यानी 12 चय, एक कम निषेक भागार मात्र विशेष नहीं होते, यानी 12 चय 15 चय नहीं हो सकते। समझ में आई इसकी भाषा? तो कितने चय कम पड़े हमको? 3 चय कम पड़े, तो क्योंकि गुणहानि के, गुणहानि हमारी 8 है, एक अंक का अर्धभाग, उसका अर्धभाग होता है 4, 4 में एक कम 3 होते हैं, यानी 3 मात्र विशेषों से हीन के उतने मात्र होने का विरोध है, यानी 12 संख्या 15 से 3 है कम है, तो जो 3 से कम है 12 संख्या वो 15 संख्या नहीं हो सकती, बस इतना कहना चाहते हैं। ये 15 होते ना तो पूरा एक बढ़ जाता, तो 12 का भागार 13 हो जाता, कोई उतना नहीं है, 4 पंचमांशी है, इतना कहना चाहते। पुनः इसके विरलन का कथन करने पर एक कम निषेक भागहार से, एक कम निषेक भागहार ने हमारा 15, डेढ़ गुणानि को अपवर्तित कर, यानी 12 को अपवर्तित कर, यानी 12 बटे 15 करना है, जो लब्ध हो वह विरलन का प्रमाण होता है, ऐसा कहलाना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? पहले हमने क्या कहा था, 256 के लिए हमने 12 का विरलन किया था और उसमें 256 प्राप्त हुए थे, अभी इसका भागहार कहो या यहाँ का विरलन का प्रमाण कितना आएगा? तो 12 पूर्णांक 4 पंचमांश, यहाँ क्या लिखा, इसको डेढ़ गुणहानि में मिलाने पर द्वितीय निषेक का भागहार होता है, यानी ये जो 4 पंचमांश आया वो 12 में मिला दो, 12 पूर्णांक 4 पंचमांश आते हैं, ये क्या है? द्वितीय निषेक के लिए भागहार का प्रमाण। पहले निषेक के लिए भागहार का प्रमाण कितना था? डेढ़ गुणहानि यानी 12, द्वितीय निषेक 240 का है, उसके लिए बांगार का प्रमाण क्या है, 12 पूर्णांक 4 पंचमोश। हम इसको टैली कर सकते हैं कैसे कि 3072 को 240 से भाग दो, वही संख्या आने वाली है, ख्याल में है ना। इसको हम टैली करके ऐसा देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, उसका प्रमाण यह है, यानी 12 को 16 माइनस 1 यानी 15 से भाग दिया तो 4 पंचमोश आ गए। 12 में 4 पंचमोश मिला है तो 12 पूर्णांक 4 पंचमोश, 12 पंचीस 64 पंचमोश उसको सॉल्व करके लिखा है उन्होंने। इसका समस्त द्रव्य में भाग देने पर द्वितीय वर्गणा का द्रव्य होता है, यानी 3072 को 64/5 से भाग दिया यानी उल्टा करके गुणा किया, 240 संख्या आई। यहाँ तक समझ में आई बात, ये विरलन के द्वारा नया भागहार निकाला उन्होंने। अथवा अब ये क्षेत्र के द्वारा इसी को समझाएंगे, डेढ़ गुणानी मात्र क्षेत्र को स्थापित कर, ये मूल में देखिए ऊपर जो उन्होंने बताया, डेढ़ गुणानी मात्र क्षेत्र को स्थापित करना इन्हें क्या करना है, ये डेढ़ गुणानी यानी हमारी 8 और 4 12, ये 12 ये डेढ़ गुणानी हुई और ये 256 हुए हमारे, इसी ये पीस बनाए हमने, ये 256 और ये डेढ़ गुणानी। अभी उसके 8 का प्रमाण में मत जाओ, वो डेढ़ गुणानी बहुत बड़ी है, फिर भी हम उसको इस तरह से लिखेंगे, यानी ये जो हमने 256 इंटू 12 372 तो हमारा पूरा क्षेत्र आ गया ना, तो ये पूरा क्षेत्र था। अभी इसको क्या करना, देखो डेढ़ गुणानी मात्र क्षेत्र को स्थापित कर उसे एक वर्गणा विशेष के विस्तार रूप से और डेढ़ गुणानी के आयाम रूप से एक श्रेणी से फाड़कर, अभी उसमें से एक चय कम करना है, एक चय करना है, 256 में से एक चय कम करेंगे तो कितना 240 आ जाएगी। तो ये 16 वाला एक पीस यहाँ से निकाल लो, तो यहाँ भी नीचे 240 रह जाएंगे और ऊपर 16 वाला एक पीस यहाँ से ये निकाला, ये 16 वाला पीस कितना है, डेढ़ गुणानी जितना है, 12 है उसमें, 16 इंटू 12 है, 16 इंटू 15 होते तो पूरा ही मिल जाता हमको, ख्याल में आई बात, परंतु वहाँ उतना कम है, कितना है ये 12 के आगे, यहाँ पूरा एक भी नहीं है, 4 पंचमोश हो जाता है, यानी इसको यहाँ अगर हम फिट करेंगे तो 4 पंचमोश हो जाता है, पूरा नहीं होता, 4 पंचमोश इतना ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें 240 नहीं मिलते ना, ये 12 और एक 13 होने के बदले ये 4 पंचमोश ही हम बढ़ेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ऐसा उसको फिट कर देंगे, पूरा एक 13 नहीं बनाए, कम बनाया और उसको इतना स्प्रेड कर दिया, ये उसका अर्थ होता है। फाली निकाल ली और उसको इस तरह से फिट किया तो 12 प्लस 4 पंचमोश ऐसा हुआ और ये 240 हो गए, यानी 240 4 पंचमोश ऐसा हुआ। अब फाड़ कर 106 नंबर के पेज पर, एक कम निषेक भाग हार मात्र यानी 15 वर्गणा विशेष रूप 15 × 16 विष्कम्भ व डेढ़ गुणानी आयाम से डेढ़ गुणानी स्थानांतर क्षेत्र के ऊपर स्थापित करने पर क्या कहते हैं, ये एक यहाँ चय निकाला, ऐसे चय कितने थे, 16 थे, 16 ने 256 थे, 16 × 16 256 थे, उसमें से 15 × 16 रखे और एक पूरा ये निकाल दिया यहाँ से और वो यहाँ फिट कर दिया। क्षेत्र के ऊपर स्थापित करने पर साधिक डेढ़ गुणानी भागार होता है, ये 12 था, अभी वो 4 पूर्णांक 4 पंचमोश हो जाएगा, ये थोड़ा 4 पंचमोश ही बढ़ा, पूरा एक नहीं बढ़ा, ये कहना चाहते। अब ये तो दूसरी वर्गणा की बात हो गई ना, तो दूसरी वर्गणा के लिए हमने 1 16 कम कर दिए थे, अब तीसरी वर्गणा को देखना है, यानी 16 दो बार कम हो जाएंगे, उसको पढ़ेंगे पहले, और वहां का भागार और बढ़ेगा, पहले 12 था फिर 12 पूर्णांक 4 पंचमोश हुआ वो और बढ़ेगा, अभी वो कितना होता है देखेंगे। देखो अब तृतीय वर्गणा के कर्म प्रदेशों के प्रमाण से सब वर्गणाओं के कर्म प्रदेश कितने काल द्वारा अपहृत होते हैं। तृतीय वर्गणा में कितने हो गए, 240 माइनस 16, या पहले 256 में से डायरेक्ट 32 माइनस करो तो भी वही बात आएगी, क्योंकि दो निषेक कम हो गए तो कितने आ गए, 224 आ जाएंगे, 224 वहां का होगा। अब हमारी संख्या कैसे निकलने वाली है, 3072 डिवाइडेड बाय 224, परंतु वो इस मेथड से निकालेंगे कि पहले 12 का विरलन करेंगे, उसमें बांटेंगे तो 256 आएंगे। हम पढ़ेंगे यहां से, देखो तो कितने काल द्वारा अपहृत होते हैं, पहले वो जवाब देते हैं और बाद में उसको सॉल्व करके बता रहे हैं। साधिक एक अधिक डेढ़ गुणानी स्थानांतर, डेढ़ गुणानी का प्रमाण कितना है ब्रह्मा, 12, उसमें एक कितना 13, और 13 में भी साधिक 13 पॉइंट समथिंग आ गए। तो साधिक एक अधिक डेढ़ गुणानी स्थानांतर काल द्वारा अपहृत होते हैं, यानी 13 पूर्णांक समथिंग करेंगे उसके द्वारा ये अपहृत होता है, यानी यहाँ का भागार का प्रमाण 13 पूर्णांक कुछ आएगा, वो कितना आता है वो अभी बताएंगे। यथा पूर्वोक्त विरलन में, पहले विरलन कितना किया था याद है हमने, 12 का किया था, देखो एक 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 विरलन किया 12 बार, उसमें 3072 बाढ़ दिए तो हर एक के ऊपर 256 आए थे, 16 नहीं आए थे, 256 आए थे। अभी क्या करना है देखो, पहले मैं यहां से पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ेंगे। पूर्वोक्त विरलन में यानी 12 के विरलन करने में जो डेढ़ गुणानी मात्र प्रथम वर्गणाएं स्थापित है, प्रथम वर्गणा का अर्थ होता है 256, ये 12 में 12 बार 256 थे, यहां तक समझ में है ना, 12 का विरलन किया 3072 उसमें बांट दिए तो हर एक के ऊपर 256 आ गए, यहां तक समझ में आई बात। उनमें से प्रत्येक में से तृतीय वर्गणा के प्रमाण को घटाने पर, अभी उसमें से क्या करना है, 2/6 घटाओ या पूरे तीसरी वर्गणा घटा दो, तीसरी वर्गणा 224 की है, हर एक में से हमने 224 निकाल लिए, यहां पर भी 224 निकाले, 224 कितने बार निकले, 12 बार 256 थे, 12 बार 224 निकले, यह कुछ रहा कि नहीं है, 32 रहे, ये 32 शेष रहे, यहां तक समझ में आई बात प्रेरणा बेन, 12 बार 256 थे, हर एक में से हमने 224 निकाले तो 12 बार तो 224 निकले और हमें मिला और कितना रह गया है, 12 बार 32 रह गए हैं। अभी ये तृतीय निषेक कितने चयों से बनते हैं, यहां से हर एक के ऊपर दो दो चय है, 12 बार 2 चय यानी 24 चय है, मेरी भाषा में मैं समझाना चाहती हूं, हमारे पास 24 चय है। तृतीय निषेक के लिए कितने चयों से तीसरा निषेक बनता है, हमारा चय है 16, 14 बार 16 लेंगे तो तीसरा निषेक बनता है। देखो पहले निषेक के लिए 16 बार चय यानी निषेक भागहार प्रमाण चय होते तो पहला निषेक नहीं वर्गणा बनती है, दूसरी वर्गणा के लिए 15 बार चय लेते हैं और तीसरी वर्गणा के लिए 14 बार चय लेते हैं, तो 14 चयों से एक तृतीय वर्गणा हो गई, तो 24 चयों से कितनी होगी, क्योंकि हर एक बार दो दो चय बैठे ना तो 24 चय मिले, तो 24 डिवाइडेड बाय 14 आ गए, एक पूर्णांक 10/14 आ गए ना, तो एक पूर्णांक हुआ, तो एक पूर्णांक 10/14 है वो हम 12 में मिलाएंगे तो 13 पूर्णांक 10/14 आएंगे, 10/14 को या 5/7 को एक ही बात है, ये मेरी ओर से बताएं, अभी उनकी भाषा में बताएंगे पढ़ेंगे, समझ में आते ना कैसा करना है। देखो हमने एक प्रत्येक में से तृतीय वर्गणा निकाली 224 वाली, बचे कितने 32 क्या है, 2 चय है, 12 बार 2 चय आए यानी 24 चय मिले हमको, 14 चयों में से एक तृतीय वर्गणा होती है तो 24 चयों में से कितनी मिलेगी, पूरी एक प्लस समथिंग 5/7 और मिले, तो अभी यहाँ का भागार क्या होगा, 12 प्लस एक सप्तमांश, वन पूर्णांक पांच सप्तमांश, यानी 13 पूर्णांक पांच सप्तमांश आ गए, ये यहाँ का भागार मिलेगा हमें। अब यहाँ से पढ़ेंगे, देखो इसी को समझा रहे हैं, फिर से पढ़ते हैं, यथा लिखा है ना वहां से, तीसरी लाइन ऊपर के पैराग्राफ की, यथा पूर्वोक्त विरलन में, आप वहां नंबर डालते चले जाओ तो आपको घोटाला नहीं, पूर्वोक्त विरलन में ने 12 का विरलन था, जो डेढ़ गुणानी मात्र प्रथम वर्गणा है, प्रथम वर्गणा 256 की थी, स्थापित है उनमें से प्रत्येक, पूर्वोक्त 12 बार प्रथम वर्गणाएं 256 स्थापित है उनमें से प्रत्येक में से तृतीय वर्गणा का प्रमाण है 224 घटाने पर डेढ़ गुणानी मात्र तृतीय वर्गणाएं उपलब्ध होती है, यानी तृतीय वर्गणा कितनी मिली, 12 मिली, यानी 12 तृतीय वर्गणाएं मिली, समझ में आई बात, और अभी बचा कितना, एक एक अंक के ऊपर दो दो वर्गणा विशेष, दो छह यानी 32 उपलब्ध होते, यहां तक समझ में आई बात, हमने 256 में से हर एक में से 224 निकाले तो वहां 32 रहे, 32 रहे का अर्थ है दो दो छह रहे, अब उनको तृतीय वर्गणा के प्रमाण से अपहृत करने पर, से डालो वहां पर प्रमाण से लास्ट, साधिक एक अंक प्रमाण अवहार काल उपलब्ध होता है, यानी उनमें से कितने मिलेंगे हमको, एक पूरी मिलेगी तृतीय वर्गणा 224 वाली और ऊपर कुछ शेष रहेंगे, यथा वो उसको सॉल्व करके बताएं, दो अंक कम दो गुणहानि मात्र वर्गणा विशेषों को, दो गुणहानि कहो या निषेक भागार कहो एक ही बात है, तो 14 यानी दो गुणानी यानी 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 14, यानी 14 चयों को ग्रहण कर, वर्गणा विशेष यानी चय हमारी भाषा में, तो 14 चयों को ग्रहण कर यदि एक तृतीय वर्गणा का प्रमाण आता है, मैंने यही बात बताई थी आपको, त्रैराशिक किया था ना हमने, 14 चयों में से एक तृतीय वर्गणा होती है, तो हमारे पास 24 चय है उसमें से कितनी मिलेगी, तो कहते हैं यहाँ फिर दो अंक कम दो गुणहानि मात्र यानी 14 वर्गणा विशेषों को ग्रहण कर यदि एक तृतीय वर्गणा का प्रमाण आता है तो तीन गुणहानि मात्र, तीन गुणहानि किसको कहा, हमने जो 24 चय कहा वही तीन गुणहानियां है, क्योंकि 12 गुणहानि डेढ़ होती है, 24 वो तीन गुणहानियां हो जाएगी, यानी तीन गुणहानि मात्र वर्गणा विशेषों को यानी 24 चयों को ग्रहण कर कितनी तृतीय वर्गणा होती है, इस प्रकार प्रमाण से फलगुणित इच्छा को अपवर्तित कर, ये प्रमाण से फलगुणित इच्छा क्या होती है,
प्रमाण से फलगुणित इच्छा राशि को,
फिर से
हमारा प्रमाण
देखो, प्रमाण से फलगुणित इच्छा को अपवर्तित करने पर
एक दिशक के लिए एक दिशक प्रमाण बताया
देखो, हाँ,
और एक दिशक में चाहिए कितने है 14,
देखो ये 24 को एक से गुणा करना और 14 से भाग देना, ये उसका अर्थ होता है, त्रैराशिक में ये बातें होती है ना, देखो यहाँ का प्रमाण से फलगुणित इच्छा को अपवर्तित कर, ये प्रमाण है, ये प्रमाण राशि 14 और उसमें एक तृतीय निषेक होता है, ये फल है, और हमारी इच्छा किसके लिए
24,
तो फल और इच्छा को गुणा करो और प्रमाण से भाग दो, इच्छा है, इच्छा 24 है, प्रमाण 14 है,
प्रमाण 14 है, इच्छा 24 है,
देखो ये त्रैराशिक ऐसा आपके सामने लिखा है, हम स्कूल में पढ़े ना ये त्रैराशिक, हाँ, तो हमें क्या करते, हमेशा इसका इसका गुणा करते इससे भाग देते, उन्होंने उसी को इसको इच्छा राशि कहा, और ये फल राशि है और ये प्रमाण राशि है, तो इन दोनों का गुणाकार करना इसे भाग देना, प्रमाण से भाग देना किसको, फलगुणित इच्छा को, ये फल है एक तृतीय निषेक, इच्छा है 24 चय, ये फलगुणित इच्छा है ने 24 एक तृतीय निषेक, एक तृतीय निषेक, एक निषेक मिला, निषेक नहीं वर्गणा, एक वर्गणा मिली. हाँ, 24 गुना 1 डिवाइडेड बाय 14, इसको कहते हैं प्रमाण से फलगुणित इच्छा को अपवर्तित करना यानी भाग देना. ये उनकी ऐसी अटपटी भाषा, हमको डर लगता है क्या बढ़ रहे. तो कितनी तृतीय वर्गणाएं होगी, यानी 14 चयों में एक वर्गणा मिलती है, तो 24 चयों में कितनी वर्गणाएं मिली, एक पूरी मिलेगी. 24 डिवाइडेड बाय 14, एक पूर्णांक, 10 14 अंश, यानी 5 सप्तमांश. इस प्रकार प्रमाण से फलगुणित इच्छा को अपवर्तित करने पर साधिक एक अंक होता है, उसी को साधिक एक कह दिया. एक पूर्णांक और आगे कुछ शंका, अन्य कितनी वर्गणा विशेषों के होने पर द्वितीय अंक उत्पन्न होता है. अभी इसका अर्थ क्या है समझाएंगे आप अश्विन भाई?
अन्य कितनी वर्गणा विशेषो, 14 नहीं 16 और वो 14 बार मिलेंगे तो
नहीं. देखो क्या कहा, यहाँ संख्या क्या आई, एक पूर्णांक 5 सप्तमांश आई. हमको 2 चाहिए होती, 28 चाहिए होती, 28 होती तो 2 मिल जाते, 14 में 1 तो 28 में 2 मिलते, तो कितनी कम पड़ी हमको, 4 कम पड़ी. नहीं समझे? उनकी भाषा समझ में नहीं आती है. भाषा समझे तो मजा आती है. देखो कहते कितनी वर्गणा विशेषों के होने पर द्वितीय अंक उत्पन्न होता है, ऐसा पूछने पर उत्तर देते हैं कि 4 अंक कम गुणहानी मात्र अन्य वर्गणा विशेषों के होने पर द्वितीय अंक उत्पन्न होता है. यानी हमारे तो 4 अंक कम पड़े ना, तो गुणहानी भी हमारी 8 की है, 8 में 4 कम यानी 4 ही हो गए, यानी और 4 अंक होते वहां पर. यानी अपनी भाषा में 28 चय होते तो 2 अंक मिल जाते, तो 12 के बदले भागहार 14 हो जाता, परंतु हमारा भागहार कितना हुआ, 13.5 सप्तमांश हुआ है. ख्याल में उनके क्या कितने कम पड़े उसकी चर्चा है.
24 में 4 मिलाने पर राशि का द्वितीय अंक उत्पन्न होता है,
हो जाता है. यानी हमें 2 तृतीय निषेक मिलते, 2 तृतीय निषेक मिलते, पर हमें अभी कम पड़े, 5 सप्तमांश हुए ना, केवल एक पूर्णांक 5 सप्तमांश हुए, 2 पूर्ण नहीं आए. इसको ऊपर आया था ना, साधिक एक अंक आता है, वो शंका समाधान को छोड़ अपो. साधिक एक अंक यानी कितना आया था, एक पूर्णांक 5 सप्तमांश. इसको 1.5 गुणहानि में मिलाने पर साधिक एक अंक अधिक 1.5 गुणहानि भागार होता है. साधिक एक अंक अधिक 1.5 गुणहानि, 1.5 गुणहानि 12 प्लस 1.5 सप्तमांश यानी 13.5 सप्तमांश हो जाता. वो पूरा भी बता रहे, उसका प्रमाण यह है.
ये जो संख्या में जो बताया ना, कितनी वर्गणा विशेष के होने पर द्वितीय अंक प्राप्त होता है,
अन्य कितने पूरा, केवल टोटल कितने ने, टोटल कितने कहते तो हम 28 कहते, पर अन्य कितने ने, एक्स्ट्रा कितने होना चाहिए, अन्य करते एक्स्ट्रा कितने होने चाहिए थे, 4 एक्स्ट्रा होने चाहिए थे. 24 है हमारे पास, 4 कम पड़े, अन्य का अर्थ होता है एक्स्ट्रा. समझ में आई बात? क्यों कुछ प्रश्न है? उसका प्रमाण यह है, देखो 8 ये गुणहानि का प्रमाण है, 2 गुणहानि हमारा वो निषेक भागहार है. अब तृतीय वर्गणा का प्रमाण निकालना है तो उसमें 2 कम करके उसको गुणा करना है चय को, तो 8 गुना 2 16 होता है, उसमें से 2 कम कर दिए तो 14 रह गए. यानी 14 चय अगर लेते, 14 × 16 करते तो हमको तृतीय वर्गणा मिलती. यहाँ 324 छपाए तो 224 करना. आप में बराबर छपाए क्या, नई पुस्तक में बराबर है? लास्ट टाइम किया था हमने, इन्हें नई पुस्तक छपी है उसमें इतनी भूले है. हाँ लास्ट अभी कौन सी 12वीं पुस्तक 11वीं, 500 के 1000 तो जो भूले होगी, जितने पेजेस है हर पेज में 2-3 भूले निकले. हाँ बढ़ गए, क्योंकि चेक नहीं किया होगा केवल वो. हाँ क्यों, ऊपर नीचे ऐसा कुछ गड़बड़ी हो गई है उसमें जितना जन. हाँ 11वीं में बहुत मिली. हाँ देखो ये 324 किया ना, ये तृतीय वर्गणा होती है. इन्हें 14 चयों से तृतीय वर्गणा होती है। ये यूनिवर्सल हमारा रूल है, कहीं पर भी चय के प्रमाण 14 हो गए तो तृतीय वर्गणा होगी। पहले में क्या, दो गुणहानी यानी 16 चयों की पहली वर्गणा होती है, 15 चयों की दूसरी वर्गणा होती है, 14 चयों की तीसरी वर्गणा होती है, इस तरह से चले जाना, 13 चयों की चौथी वर्गणा होगी, इस तरह से आगे बढ़ेंगे हम। तो यहाँ कहते, यहाँ लिखते आगे देखो, तृतीय वर्गणा हुई ना, तो 8 त्रिक यानी 24 हो गए, हमारे पास 24 मिले थे ना, क्योंकि हमने क्या किया था, 256 में से एक एक तृतीय वर्गणा निकाल ली थी, तो वहां 32 बचे थे, 32 बचे थे का अर्थ क्या हुआ था, दो दो चय बचे थे, तो दो दो चय 12 बार बचे यानी 24 चय बचे थे, 24 को उन्होंने 8 त्रिक 24, तीन गुणानिया का, तो तीन गुणानिया मात्र चय बचे यानी 8 × 3 × 16, ये केवल लिख दिया तो इसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा ना, 8 गुणहानि का प्रमाण है, 3 × 16 यानी 3 गुणहानिया प्रमाण चय हमको मिले, 24 चय हमको मिले, तो उसका प्रमाण 384 होता है। अभी उन्होंने उसका लंबाई अलग पद्धति से किया है, तो हमारे पास 384 मिलते हैं और 224 की एक वर्गणा होती है, तो यहाँ 384 को ही 224 से भाग दिया तो 24 × 14 आ जाते हैं, तो 12 = अभी 12 को उन्होंने समच्छेद करके 168 / 14 कर दिया, यानी इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी, 12 में 1 पूर्णांक 5 सप्तमोश मिला देते, उसके बदले उन्होंने क्या किया है, उसको समच्छेद किया, 12 एकांश था, 1 को 14 से गुणा तो 12 को भी 14 से गुणा कर दिया, तो 12 को 14 से गुणा करने पर 168 आ गए, और उसके नीचे छेद आया 14, उसमें 24 / 14 मिला दिए, अब दोनों का छेद समान है तो उस राशि को मिला सकते हम, तो 192/14 आ गए। इसका समस्त द्रव्य में भाग देने पर तृतीय वर्गणा का प्रमाण होता है 3072 को 192/14 से भाग देना यानी उल्टा करके गुणा करना, 224 आते हैं। ये प्रमाण डायरेक्ट भी हम निकाल सकते थे 192/14, कैसे निकाला, हमारे पास 12 थे ने, 12 थे और हमारे 24 चयों के द्वारा हमने कितने मिला था, हमका 1 पूर्णांक 5 सप्तमोश मिला था, 1 पूर्णांक 5 सप्तमोश यानी 7 × 7 = 5 12 सप्तमोश नहीं, 1 13 हम नहीं नहीं 12 बराबर है, प्लस 1 पूर्णांक 5 सप्तमोश यानी उसको हम 13 पूर्णांक 5 सप्तमोश करेंगे। अब इसको सॉल्व करो ना, 192/14 तो वही बात होती है, उन्होंने 14 लिखा है, ये 14 इन्हें 10/14 रखा, इस तरह से उसको सॉल्व करो तो उतनी बात आने वाली, 192/14। उनके मेथड समझना है हमको, वो जो फिगर से कुछ मतलब नहीं, किस पद्धति से उन्होंने डिराइव किया है उसको समझना है, और ये क्यों ऐसा लिखा है उसका अर्थ समझने से मतलब है। अभी वो क्षेत्र की अपेक्षा जो क्या फाड़ना किधर ज्वाइन करना उसकी बात हम कल देखेंगे। 107 पेज पर आ गए हम, जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। जेपी साहब,